नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कार्ल मार्क्स की कैपिटल, अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वॉल्यूम 1, आधुनिक राजनीतिक अर्थशास्त्र की सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद कृतियों में है। मूलतः 19वीं सदी के औद्योगिक इंग्लैंड की स्थितियों पर आधारित यह पुस्तक उपन्यास या सामान्य आर्थिक परिचय नहीं, बल्कि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था का दार्शनिक, ऐतिहासिक और आर्थिक विश्लेषण है। मार्क्स का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि बाजार कैसे काम करता है, वे यह जांचते हैं कि वस्तुएं, मजदूरी, मुनाफा और संपत्ति किन सामाजिक संबंधों से बनते हैं तथा इन संबंधों में शक्ति किसके पास रहती है। पुस्तक वस्तु से आरंभ होकर मूल्य, धन, श्रम शक्ति, अधिशेष मूल्य, मशीनरी, कारखाना व्यवस्था और पूंजी संचय तक पहुंचती है। इसका केंद्रीय तर्क है कि मुनाफे का स्रोत केवल व्यापारिक चतुराई नहीं, बल्कि श्रमिक के उस श्रम का हिस्सा है जिसका पूरा प्रतिफल उसे नहीं मिलता। पेंगुइन क्लासिक संस्करण पाठक को मार्क्स के मूल तर्क और ऐतिहासिक सामग्री तक पहुंच देता है। इसे भविष्यवाणी की पुस्तक की तरह नहीं, पूंजीवाद की संरचना, उसके इतिहास और उसकी अंतर्विरोधी गतियों को समझने के गंभीर प्रयास की तरह पढ़ना सबसे उपयोगी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले वस्तु से शुरू होने वाला पूंजीवादी समाज का विश्लेषण। मार्क्स कैपिटल की शुरुआत वस्तु से करते हैं, क्योंकि पूंजीवादी समाज में अधिकांश उपयोगी चीजें बाजार के लिए वस्तु के रूप में पैदा और बेची जाती हैं। वे वस्तु के दो पक्ष अलग करते हैं। उपयोग, मूल्य किसी चीज की उपयोगिता है, जैसे कपड़े का पहनने योग्य होना। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु या धन के बदले बदली जाती है। मार्क्स के अनुसार अलग अलग वस्तुओं की तुलना संभव होने के पीछे उनमें लगा अमूर्त मानवीय श्रम है। मूल्य का माप किसी व्यक्ति की निजी मेहनत नहीं, बल्कि प्रचलित तकनीक और औसत दक्षता में आवश्यक सामाजिक रूप से जरूरी श्रम समय है। यह विचार कीमत और मूल्य को एक ही चीज मानने से रोकता है, क्योंकि बाजार कीमतें मांग, आपूर्ति और प्रतिस्पर्धा से बदल सकती हैं। मार्क्स का बड़ा बिंदु यह है कि बाजार में दिखने वाली वस्तुओं की दुनिया के पीछे मनुष्यों के बीच उत्पादन संबंध काम कर रहे होते हैं, इसीलिए वे वस्तु पूजा की अवधारणा देते हैं। इसमें वस्तुओं और कीमतों को स्वाभाविक स्वतंत्र शक्तियों की तरह देखा जाता है, जबकि वे श्रम, स्वामित्व और सामाजिक व्यवस्था के परिणाम होते हैं। यह आरंभ पूरी पुस्तक की पद्धति तय करता है, जिसमें साधारण दिखने वाली आर्थिक श्रेणियों के पीछे छिपे संबंधों को खोला जाता है। दूसरा, श्रम शक्ति और अधिशेष मूल्य से मुनाफे की व्याख्या। मार्क्स के विश्लेषण में सबसे निर्णायक अंतर श्रम और श्रम शक्ति का है। श्रमिक बाजार में अपने पूरे जीवन का श्रम नहीं बेचता, बल्कि निश्चित समय के लिए काम करने की अपनी क्षमता यानी श्रम शक्ति बेचता है। उसकी मजदूरी सामान्यतः उन साधनों के मूल्य के आसपास होती है जिनसे वह और उसका परिवार जीवित रहकर काम करने योग्य बने रहें। लेकिन कार्यदिवस में श्रमिक इतना मूल्य पैदा कर सकता है जो उसकी मजदूरी के मूल्य से अधिक हो। मजदूरी को पुनरुत्पादित करने के लिए आवश्यक श्रम समय के बाद किया गया काम अधिशेष श्रम है और उससे बना मूल्य अधिशेष मूल्य। मार्क्स इसे पूंजीवादी मुनाफे का मूल स्रोत मानते हैं। यह तर्क यह नहीं कहता कि हर नियोक्ता व्यक्तिगत रूप से नियम तोड़कर मजदूरी चुराता है, बल्कि उनका दावा है कि कानूनी स्वैच्छिक अनुबंध के भीतर भी स्वामित्व की असमान स्थिति ऐसा परिणाम पैदा करती है। उत्पादन के साधनों से वंचित व्यक्ति को जीविका के लिए श्रम शक्ति बेचनी पड़ती है, जबकि मालिक उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद पर नियंत्रण रखता है। अधिशेष मूल्य बढ़ाने के दो प्रमुख तरीके हैं, कार्य दिवस बढ़ाना या काम की तीव्रता बढ़ाना निरपेक्ष अधिशेष मूल्य से जुड़ा है। तकनीक, संगठन और उत्पादकता से जरूरी श्रम समय घटाना सापेक्ष अधिशेष मूल्य पैदा करता है। इस ढांचे से मार्क्स मजदूरी, लाभ और वर्ग संबंध को एक ही प्रक्रिया में जोड़ते हैं। तीसरा, कार्य दिवस, मशीनरी और कारखाना अनुशासन का सामाजिक प्रभाव। कैपिटल का एक अत्यंत ठोस पक्ष कारखाना, कानूनों, निरीक्षकों की रिपोर्टों और औद्योगिक श्रम की स्थितियों का उपयोग है। मार्क्स दिखाते हैं कि पूंजी के लिए कार्य दिवस की लंबाई केवल मानवीय सहन शक्ति का प्रश्न नहीं, अधिशेष श्रम बढ़ाने का आर्थिक प्रश्न भी है। इसलिए कार्य दिवस पर संघर्ष श्रमिक और पूंजीपति के बीच हितों के टकराव का प्रत्यक्ष रूप बन जाता है। मार्क्स के अनुसार कानून द्वारा कार्य समय सीमित किया जाना बाजार के बाहर का हस्तक्षेप भर नहीं था, बल्कि लंबे सामाजिक संघर्ष का परिणाम था। मशीनरी पर उनका दृष्टिकोण भी एकतरफा नहीं है। मशीन स्वयं शत्रु नहीं, किंतु पूंजीवादी नियंत्रण में वह श्रम की गति तेज करने, कौशल को खंडित करने, महिलाओं और बच्चों को कम वेतन वाले काम में खींचने तथा बेरोजगारी का दबाव बनाने का माध्यम बन सकती है। उत्पादन क्षमता बढ़ने पर भी श्रमिक का अवकाश बढ़ना अनिवार्य नहीं है। लाभ की प्रतिस्पर्धा उत्पादकता के लाभ को अधिक उत्पादन, तेज काम और बाजार विस्तार में बदल सकती है। मार्क्स श्रम विभाजन और कारखाना व्यवस्था को केवल तकनीकी दक्षता नहीं मानते, वे इन्हें नियंत्रण की संस्थाओं के रूप में भी पढ़ते हैं, जहां काम की लय, ज्ञान और निर्णय पर मालिकाना अधिकार केंद्रित होता है। यह विश्लेषण आज भी तकनीक के प्रभाव को केवल सुविधा या विनाश के सरल विकल्पों में बांटने के बजाय स्वामित्व और नियंत्रण के प्रश्न से जोड़ने में मदद करता है। चौथा, आदिम संचय और निजी संपत्ति के ऐतिहासिक निर्माण की आलोचना। मार्क्स पूंजीवाद को बचत करने वाले उद्यमियों और स्वेच्छा से काम खोजने वाले श्रमिकों की शांत कहानी के रूप में स्वीकार नहीं करते। आदिम संचय के अध्यायों में वे पूछते हैं कि वह ऐतिहासिक स्थिति कैसे बनी जिसमें एक ओर उत्पादन के साधनों के मालिक हैं और दूसरी ओर वे लोग जिनके पास बेचने के लिए केवल श्रम शक्ति है। इंग्लैंड में साझा भूमि के घेरेबंदीकरण और कृषकों के विस्थापन को वे इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। भूमि और आजीविका के पुराने साधनों से अलग हुए लोग मजदूरी श्रम की ओर धकेले गए। इस परिवर्तन को कानून, राज्य शक्ति और दंडात्मक व्यवस्थाओं से भी सहारा मिला। मार्क्स उपनिवेशवाद, दास व्यापार और हिंसक लूट को भी यूरोपीय पूंजी संचय के इतिहास से जोड़ते हैं। उनका उद्देश्य यह कहना नहीं कि बाजार की हर गतिविधि सीधे हिंसा है। उनका तर्क अधिक विशिष्ट है। आधुनिक संपत्ति संबंधों की शुरुआती शर्तों को केवल मेहनत, मितव्ययिता और अनुबंध की नैतिक कथा से समझना अधूरा है। यह दृष्टि निजी संपत्ति को प्राकृतिक और शाश्वत मानने के बजाय ऐतिहासिक संस्था की तरह देखने को कहती है। इससे पाठक आर्थिक व्यवस्था के कानूनी रूपों, राज्य की भूमिका और वैश्विक असमानता के ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रश्न कर सकता है। पुस्तक का यह भाग आर्थिक सिद्धांत को भूमि, साम्राज्य और सामाजिक विस्थापन के इतिहास से जोड़कर विशिष्ट बनाता है। अंत में पूंजी संचय, औद्योगिक आरक्षित सेना और व्यवस्था के अंतर्विरोध। मार्क्स के लिए पूंजी का लक्ष्य केवल उपयोगी वस्तुएं बनाना नहीं, धन को अधिक धन में बदलना है। इसलिए लाभ का एक हिस्सा फिर से उत्पादन में लगाया जाता है और यह संचय उत्पादन का पैमाना बढ़ाता है। प्रतिस्पर्धा पूंजीपतियों को लागत घटाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी इकाइयों में पूंजी का केंद्रीकरण और संकेंद्रण हो सकता है। मार्क्स बताते हैं कि मशीनरी और उत्पादकता में वृद्धि कुछ श्रमिकों को विस्थापित भी करती है। बेरोजगार, अधरोजगार या अस्थिर काम में लगे लोगों का यह समूह औद्योगिक आरक्षित सेना कहलाता है। इसकी मौजूदगी रोजगार पाने वालों की सौदेबाजी शक्ति सीमित कर सकती है, क्योंकि काम के लिए विकल्प उपलब्ध रहते हैं। यह अवधारणा यह नहीं कहती कि हर तकनीकी परिवर्तन अनिवार्यतः स्थायी बेरोजगारी पैदा करता है, बल्कि यह दिखाती है कि पूंजीवादी संचय में रोजगार का विस्तार और श्रम का विस्थापन साथ साथ चल सकते हैं। मार्क्स के अनुसार व्यवस्था की उत्पादक शक्ति बढ़ने पर भी संपत्ति और असुरक्षा का वितरण असमान रह सकता है। इसी विरोधाभास में वे पूंजीवाद की ऐतिहासिक सीमा देखते हैं। वॉल्यूम 1 कोई पूर्ण संकट सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करता और लाभ की दर गिरने जैसे विस्तृत प्रश्न बाद के खंडों में अधिक विकसित होते हैं। फिर भी संचय का यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत सफलता या विफलता के पीछे श्रम बाजार और स्वामित्व की व्यापक संरचनाएं काम करती हैं। निष्कर्ष में कैपिटल वॉल्यूम 1 उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अर्थशास्त्र को केवल कीमतों, विकास दरों और व्यक्तिगत विकल्पों तक सीमित नहीं मानते। राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, श्रम अध्ययन, दर्शन और मीडिया या सांस्कृतिक अध्ययन के विद्यार्थियों को इसमें बाजार संबंधों की गहरी व्याख्यात्मक भाषा मिलती है। श्रमिक अधिकार, असमानता, स्वचालन, निजी संपत्ति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर विचार करने वाले पाठक भी इसके प्रश्नों से लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसे पढ़ते समय दो सावधानियां जरूरी हैं। पहला, मार्क्स 19वीं सदी के औद्योगिक पूंजीवाद का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए हर निष्कर्ष को आज की अर्थव्यवस्था पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, पुस्तक के ऐतिहासिक प्रभाव और मार्क्सवादी राज्यों के अनुभव को पुस्तक के तर्कों से अलग आलोचनात्मक ढंग से समझना चाहिए। इसका बौद्धिक लाभ तैयार उत्तरों में नहीं, बल्कि आर्थिक श्रेणियों को प्रश्नांकित करने की क्षमता में है। मजदूरी को केवल आय, तकनीक को केवल प्रगति और संपत्ति को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मानने के बजाय पाठक इनके सामाजिक आधार देखना सीखता है। समान विषय की कई पुस्तकों से इसका अंतर इसकी पद्धति में है। मार्क्स नैतिक आक्रोश या केवल नीतिगत सुझावों पर नहीं रुकते, वे वस्तु के रूप से शुरू करके उत्पादन, वर्ग शक्ति, कानून, इतिहास और संचय को एक संगठित तर्क में जोड़ते हैं। भाषा और संरचना चुनौतीपूर्ण है, पर धैर्यपूर्वक पढ़ने पर यह पुस्तक पूंजीवादी समाज की आलोचना के लिए असाधारण रूप से प्रभावशाली वैचारिक उपकरण प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कार्ल मार्क्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।